क्या बोलो, माना जिंदजान तुम बहुत बड़े और बिजी आदमी हो, पर कभी तो एक बार में कॉल उठा लिया करो। इम्पॉर्टेंट काम भी तो हो सकता है। ऐसा तो है नहीं मैं तुम्हें गप्पे मारने के लिए फोन करती हूँ, काम से ही करती हूँ ना, तुम और तुम्हारे इम्पॉर्टेंट काम।
अरे क्या बात है, मत पैसों के लिए नहीं किया है फोन।
अच्छा, वैसे मैं डरता भी नहीं।
तुम डराने वाले जो ठहरे। वैसे सच में मैंने जरूरी काम के लिए फोन किया है, जो पैसों को लेकर नहीं है।
पैसों के लिए होता तो पुलकित रॉय को करती फोन, तुम्हें थोड़ी डिस्टर्ब करती, है कि नहीं?
या बोलो कौन सा जरूरी काम?
मैं मुंबई में हूँ।
मुंबई में?
हाँ, अभी पहुंची हूँ।
कैसे?
उड़कर? कैसे आना हुआ ये पूछा है मैंने, ना कि उड़कर आई हो या चलकर आई हो।
ऐसा क्या?
तुमसे मिलने आई हूँ। वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले आई हूँ, आई को नहीं लाई साथ।
मैं चिंता क्यों करूंगा?
ये भी है, आई तो मेरी है, तुम्हारी थोड़ी ना। वो कुछ लगती हैं, कुछ लगती तो बात करते तुम उनसे, मिलते उनसे, पर तुम्हें तो उनसे कुछ लेना देना नहीं है।
शट अप।
ओके, वैसे वो तुम्हारी आई है और तुम अकेला छोड़ आती हो उन्हें। तुम्हें तो बड़ी चिंता रहती है अपनी प्यारी आई की।
हेलो, अकेली आई हूँ मैं, अकेली छोड़कर नहीं आई, और तुम अच्छे से जानते हो मुझे आई की कितनी परवाह है, कितना प्यार है उनसे।
उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा मैंने, केयरटेकर है उनके पास, वो तो एक अर्जेंट काम था तो आना पड़ा। आई की हेल्थ को लेकर तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे, इसीलिए आई हूँ, वो भी जल्द से जल्द जिंदजान।
क्या बात?
ऐसे नहीं, मुझसे मिलो आकर, मिलकर ही बात होगी। कॉल पर करनी होती तो मैं मुंबई क्यों आती? जल्द मिलना है।
कब मिलोगे बताओ, मुझे जल्दी वापस भी जाना है मेरी आई के पास जो बीमार है।
ये सुनते ही अयांश फट से बोला,
क्या हुआ?
परवाह, जो पूछा है उसका जवाब दो।
वो मेरी आई को कल फीवर था।
फीवर? हाँ, जो अब ठीक है, फीवर है, फिर से आ सकता है। वो आए उससे पहले मुझे पुणे वापस जाना है, वो भी तुमसे मिलकर। तो मिलने के बारे में कुछ कहो।
9 बजे रेस्टोरेंट पहुंच जाना, वहीं तुमसे मिलूंगा।
नो नो, मैं होटल में हूँ, ट्रैवल करके आई हूँ जिंदजान, वापस भी जाना है, उससे पहले थोड़ा रेस्ट भी करना है, तो तुम मुझसे मिलने होटल ही चले आओ। मैं एड्रेस सेंड कर रही हूँ, अभी आना, भूलना मत, मुझे वापस भी जाना है पुणे अपनी आई के पास जो बीमार है।
इतना कह तारा ने फोन कट कर दिया और लंबी सी सांस भर हल्का सा मुस्कुराकर फोन की ओर देख बोली,
आई, आप अयाज के लिए इम्पोर्टेंट तो हो, यूं अजनबियों के लिए इतना ना परेशान हुआ जाता और ना इतना किया जाता है जितना तुम करते हो जिंदजान। मेरी भी नहीं करती इतनी फिक्र तो जितनी आई की करते हो। फर्क होता है अपने में और पराए में, तारा ये जानती भी है और अच्छे से समझती भी है। मानो या ना मानो, परवाह है अयांश तुम्हें आई की, और रिश्ता भी है आई से तुम्हारा, जो आज पता चल जाएगा। इधर तारा खुश हो रही थी, उधर उसके सडनली फोन कट कर देने से अयांश की भौहें चढ़ गईं। ऐसे कैसे फोन कट कर सकती है, वो भी मेरा? एक पल तो उसे तारा पर गुस्सा आया, पर दूजे ही पल वो परेशान सा हो, वो भी सोनाक्षी जी के लिए। ऐसा क्या है उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो तारा मुंबई ही चली आई, फोन पर बात नहीं कर सकती थी? तभी तारा का मैसेज आ गया, होटल का एड्रेस भेजा था तारा ने, अयांश एड्रेस देखकर। अभी और यहीं से चला जाता हूँ, पता नहीं क्या बात है। खुद से कहे अयांश फोन कर अपने लिए वहीं गाड़ी मंगाता है जो थोड़ी देर में ही आ जाती है। अयांश गाड़ी की ओर बढ़ते पुलकित को कॉल करता है,
तारा मुंबई आई है, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने?
व्हाट, तारा मैम मुंबई में? सॉरी सर, बट मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, बताया नहीं मैम ने मुझे, ना पैसों को लेकर कुछ कहा, ना ही टिकट बुकिंग या गाड़ी अरेंज करने को, मैं नहीं जानता सर। पुलकित बोल रहा था कि अयांश ने कॉल कट कर दिया।
ये लड़की बहुत ज्यादा मनमानी करने लगी है,
बोलते अयांश गाड़ी में बैठ गया। तभी उसको आरवी का मैसेज आ गया,
घर नहीं आना?
वाइफी, मैं अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, वो करके ही आऊंगा, अयांश ने रिप्लाई किया।
ओ, हम आपका ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे थे, आरवी का फिर मैसेज आया,
मुझे घर आने में टाइम लगेगा, तुम ब्रेकफास्ट कर लो।
ओके,
रिप्लाई देकर अयांश फोन को साइड वाली सीट पर फेंक गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चला गया। अयांश होटल पहुंचा जहां तारा और सोनाक्षी जी ठहरी थीं। अयांश ने गाड़ी में बैठे बैठे ही तारा को कॉल किया। तारा, जो सोनाक्षी जी के साथ रूम में थी, दोनों ब्रेकफास्ट कर रही थी, फोन सामने टेबल पर पड़ा था। जैसे ही फोन रिंग हुआ, दोनों फट से फोन की ओर देखती हैं। फोन स्क्रीन पर अयांश का जिंदजान नाम लिखा हुआ देख सोनाक्षी जी बिना किसी हाव भाव के तारा की ओर देखती हैं। वहीं तारा के गले में खाना फंस गया, वो खांसने लगी। सोनाक्षी जी उसकी ओर पानी का ग्लास बढ़ाती हैं, पर तारा पानी का ग्लास ना पकड़कर अपना फोन उठा सोफे से खड़ी हो गई। आई, खांसते खांसते अयांश का फोन। सोनाक्षी जी हैरान होते, दिख रहा है अयांश का फोन आया है, पर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो तारा? तारा खांसते खांसते फोन की ओर देखते, आई, हमें हॉस्पिटल जाना है ना, अयांश ने वही पूछने के लिए फोन किया होगा, हम अभी तक होटल ही हैं, जल्दी उठिए आई, जाकर रेडी होइए, जल्दी निकलना है हमें। सोनाक्षी जी खड़ी होते, 8:30 ही तो बजे हैं तारा, 9:30 की अपॉइंटमेंट है, 1 घंटा बाकी है। वो आगे बोलती कि तारा उनका हाथ पकड़ वॉशरूम की ओर ले जाते, फिर बोली, आई, ये मुंबई है, मुंबई, यहाँ का ट्रैफिक पता है ना आपको, 10 मिनट के काम में घंटा लग जाता है, टाइम पर पहुंचना जरूरी है, अभी जाएंगे तभी पहुंचेंगे वक्त पर, देर हुई तो अयांश डांटेगा।
सोनाक्षी जी तारा से हाथ छुड़ाते, जरा सांस तो ले लो तारा, हालत देखो अपनी, खांसे जा रही हो, बोले जा रही हो। तारा वॉशरूम का डोर खोलते, मैं ठीक हूँ आई, अयांच का फोन आ रहा है आई, देखो बार बार उसका गुस्सा, जानते हो ना सांसे उखाड़ देगा वो मेरी, समझो ना आई, जिंदजान ने स्पेशल आपके लिए बाहर से डॉक्टर बुलाया है, लेट नहीं होना है, मेरी फिक्र छोड़ो, मैं सांस ले लूंगी और खांसी भी रोक लूंगी। मैं अयान से कहती हूँ हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए, ऐसा कहूंगी तो गुस्सा नहीं करेगा वो, है ना, आपस फटाफट रेडी हो जाओ, जाओ ना। तुम भी ना तारा, पहले रेडी हो रही थी तब रोक दिया, अब जल्दबाजी कर रही हो, सोनाक्षी जी बोल रही कि तारा ने उनकी बात काट दी। हाँ तो तब हमें खाना खाना था आई, ठंडा हो जाता ना, अब तो खाना खा लिया, जाओ ना आप अब रेडी होने। जा रही हूँ, अयांश का फोन आया है, बर्ताव तो ऐसे कर रही हो जैसे वो खुद आ गया। तारा की हरकत पर हैरान होते दाएं बाएं गर्दन हिलाते हुए सोनाक्षी जी वॉशरूम में चली गई। उनके जाते ही तारा ने फोन पर नजर डाली। अब तक अयांश तारा को 4 बार कॉल कर चुका था, वो सीने पर हाथ रख गहरी सांस भरती है। कॉल नहीं, अयांश खुद ही आया है आई, मन ही मन खुद से कह खिड़की के पास जा खड़ी हुई और वॉशरूम के बंद दरवाजे की ओर देखते वो अयांश को कॉल करती है। अयांश कॉल पिक कर कुछ कहता, वो बोल पड़ी, रूम नंबर 16 में हूँ, आ जाओ जल्दी आ जाओ, कह तारा ने फोन कट कर दिया। इधर तारा को घबराहट होने लगी, अब क्या होगा सोचकर, वहीं गाड़ी में बैठा अयांश उसकी हरकत पर तिलमिला गया। फिर से पहले तो कॉल नहीं पिक किया तो आ जाओ जल्दी आ जाओ का ऑर्डर दे दिया। तारा आज तुम्हारी खैर नहीं। अयांश खुशियाते गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी का दरवाजा पटक पार्किंग एरिया से होटल के अंदर की ओर चल दिया। तारा बीच रूम में इधर से उधर चलते अयांश के आने का वेट कर रही थी। उसकी नजरें कभी रूम के दरवाजे पर तो कभी वॉशरूम के दरवाजे पर। तभी डोर नॉक हुआ। तारा जहां थी वहीं पर रुक गई। उसने डोर खोला छोड़ रखा था।
डोर नॉक करने पर भी तारा डोर खोलने ना आए तो अयांश खुद ही डोर को अंदर की ओर धकेल खोल लेता है। उसकी नजर सामने खड़ी तारा पर पड़ी जो उस ओर ही देख रही थी। अयांश उसको देखते रूम में चला आया। उसे अपनी ओर आता देख तारा थूक निगल लेती है और अपने हाथों को भी आपस में गूंथने लगती है। भाई, शेर के मुंह में हाथ डालने का काम किया था आज तारा ने, डरना लाजमी था। अयांश पास आते ही उसे कुछ कहता कि सोनाक्षी जी तारा बोलते वॉशरूम से बाहर आ गईं। सोनाक्षी जी की आवाज़ सुन अयांश का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी तारा सामने से हट गई। अयांश ने जैसे ही अपने सामने सोनाक्षी जी को खड़ा देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। आंखों में गुस्सा उतर आया, हाथों की मुट्ठियां उसने बांध लीं। वहीं सोनाक्षी जी की जैसे ही नज़र अयांश पर पड़ी तो वो हैरानी से भर गईं। लड़खड़ाती जुबान से अयांश क्रमशः